मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? तो आज हम कुछ समय के लिए भगवद गीता की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जनरली जब हमारे पास युवा अवस्था होती है, हम यंग होते हैं, हमारे पास धन आदि होता है, तो हम सोचते हैं कि अभी भगवत भक्ति करने की मेरे जीवन में आवश्यकता नहीं है। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने की ये उम्र थोड़ी है, अभी तो मुझे एंजॉय करने दो। मुझे अभी भगवत गीता के बारे में सुनना, भगवान के मंदिर जाना और भगवत गीता को पढ़ना अभी आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भगवान के बारे में सोचूंगा। हाँ, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब भगवान के धाम वृंदावन आदि जाऊंगा, जब बुढ़ापा आएगा तब मैं भगवत गीता को पढ़ूंगा। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए शास्त्र भागवतम में हिरण्यकशिपु के जो पुत्र थे प्रहलाद कहते हैं कि भगवान के भक्ति की जो शिक्षा है वो हमें अपने बचपन से ही प्राप्त करनी चाहिए। कौमारम आचरतः प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, कि आयु की कुमार अवस्था से ही भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए और भगवान की जो शिक्षा है उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार मुंबई में था, वहां एक वीटी रेलवे स्टेशन है, तो वहां हम भगवत गीता का वितरण कर रहे थे। तो जब भगवत गीता हमारे हाथ में थी तो लोगों को देते जा रहे थे कि आप भगवत गीता ले लो, आपके जीवन को सफल बनाओ, इसका अध्ययन करो। तो जैसे एक युवा व्यक्ति आ रहा था, उसके हाथ में मैंने भगवत गीता पकड़ाई तो वहां से वो इतना डर के भाग गया जैसे कि उसके हाथ में कोई मैं सांप या कोबरा डाल रहा हूं। तो मतलब व्यक्ति इतने अधिक नीचे गया है, ये जो संस्कृति है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का जो संदेश है, भगवत गीता है, उसके बारे में जानना नहीं चाहता। तो भगवत गीता क्या विषय वस्तु है? भगवत गीता एक गाइड बुक है। जैसे हम कई सिटीज में जर्नी करने के लिए जाते हैं तो गाइड बुक ढूंढते हैं कि उस सिटी की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में वहां वर्णन है या नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान भी एक अमेजिंग जो शहर है या अमेजिंग जो अपना धाम है वैकुंठा, उसका जो ज्ञान है वो भगवत गीता के माध्यम से हमें प्रदान करते हैं और भगवत गीता के द्वारा हमें गाइड करते कृष्णा कि किस प्रकार से आप इस कष्टमय स्थिति से उबर कर मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आज के समय में, आज के समाज में लोगों के पास एक बीमारी है। श्रील प्रभुपाद 1960s में जब दिल्ली में थे तो उन्होंने एक मैगजीन लिखा, मैगजीन में आर्टिकल्स लिखते थे और उसका वितरण करते थे उस मैगजीन का। तो एक बार एक व्यक्ति को मिले, उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतनी सारी चीजें लिख रहे हो, भगवान के बारे में इतनी सारी चीजें बोल रहे हो, हमारे पास उन चीजों के लिए टाइम नहीं है। क्या नहीं? हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर श्रील प्रभुपाद को स्मरण आया, उन्होंने एक नया आर्टिकल लिखा, उन्होंने एक नया लेख लिखा जिसका नाम था कि आज के समाज की जो सबसे बड़ी बीमारी है और वो क्या है, नो टाइम। मॉडर्न एज की जो डिजीज है वो यही है कि टाइम नहीं है। और वास्तव में हम अपने जीवन में सूक्ष्मता से सोचेंगे, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि काल रूपी सर्प सदैव हमारे सर के पास है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। अभी रिसेंटली दिल्ली जू के बारे में सुबह में प्रवचन दे रहा था हमारे टेम्पल में, तो वहां मैं वही बात बता रहा था कि वहां भागवतम में राजा मुचुकुंद ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो बहुत लोभी है, लालची है और इंद्रिय भोगों में दिन रात लगा हुआ है। तो ऐसे लालची लोभी व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत अत्यधिक सुखी हूँ, संपन्न हूँ, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं है। लेकिन उसकी स्थिति कैसे है, जिस प्रकार से एक चूहा खड़ा है और चूहे के सामने एक सांप है। तो राजा मुचुकुंद कहते कि हे भगवान, ऐसे जो लोग आपकी सेवा नहीं करते, आपके नामों का जप नहीं करते, भगवत गीता आदि में अपने मन को नहीं लगाते, वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों के सामने आप आते हो एक सर्प के भांति। जिस प्रकार से चूहे के सामने एक सांप खड़ा रहता है और अपने जहरीले दांतों को बाहर निकाल कर उसको चाटता रहता है, किसको देखकर चाटता है, चूहे को देखकर। तो उसी प्रकार से जो लोग अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं, इतने दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त कर भी उन्नत जीवन की आकांक्षा नहीं करते, उन लोगों की तरह जीवन, उन लोगों का जीवन एक चूहे के भांति है और उनके सामने काल रूपी सर्प क्या है, सदैव अपने जहरीले दांतों को निकालकर चाट रहा है और किसी भी क्षण उस व्यक्ति को मृत्यु को प्राप्त होना होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सही में हम सबके पास टाइम नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट आने वाला नहीं है, मेरे जीवन में मृत्यु आने वाली नहीं है। महाभारत में वर्णन आता है युधिष्ठिर महाराज का, जब पांडवगण वनवास के लिए गए थे द्रौपदी कुंती आदि के साथ, तो द्रौपदी को बहुत प्यास लगी। द्रौपदी ने अपने पतियों को कहा कि मुझे प्यास लगी है, आप हमें क्या करो, जल की व्यवस्था करो। तो पति का कर्तव्य है पत्नी की डिजायर्स को फुलफिल करना। तो वैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि हे भीम, तुम चले जाओ सर्वप्रथम, वहां नजदीक सरोवर है, वहां से जल लेके आओ। तो भीम गए, उनको बड़ा अभिमान था, गर्व था अपने शक्ति का। तो जब भीम गए तो वहां सरोवर के किनारे ऐसे एक वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर कुबेर का जो फॉलोवर है, जिसको यक्ष कहते हैं, वो बैठा था। तो जो यक्ष ने कहा कि भीम, तुम जब पानी लोगे तो पानी लेने से पहले मेरे पास प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दो। यदि उस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो जल लेते समय या जल का पान करते तुम यहाँ मर जाओगे, मूर्छित हो जाओगे। भीम ने कहा, अरे कौन तुम्हारी बात को सुनेगा, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ। भीम ने जैसे पानी लिया वो जलाशय से, तुरंत ही भीम वहां मूर्छित होकर गिर पड़ता है। युधिष्ठिर सोचते कि अभी तक मेरा भ्राता आया नहीं है, तो उन्होंने अर्जुन को भेजा, अर्जुन की भी सेम गति, नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, तो चारों भाइयों की उसी वही गति हुई। फाइनली युधिष्ठिर देखते कि मेरे चारों भाई वापस नहीं आए हैं और पानी भी नहीं लेकर आए, द्रौपदी की प्यास बढ़ती जा रही है। तो युधिष्ठिर महाराज को जाना पड़ा। तो युधिष्ठिर जब गए उस जलाशय के किनारे, तो युधिष्ठिर को वो यक्ष फिर से पूछता है, वो कहता है कि मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी गति तुम्हारे भाइयों की तरह होगी। तो उन्होंने 100 प्रश्न पूछे। कितने प्रश्न पूछे? और 100 प्रश्न महाभारत में वर्णित है, महाभारत ग्रंथ जो 1,00,000 श्लोकों का है। हाँ, तो महाभारत में इन सारे प्रश्नों का वर्णन आता है और उनके उत्तर का भी वर्णन आता है। तो यक्ष एक के बाद एक, कि पहला क्वेश्चन था धर्म क्या है, उसका वर्णन करना शुरू करते हैं। फिर एक प्रश्न पूछते हैं, आहानी आहानी भूता, वो प्रश्न पूछते हैं किम आश्चर्य, क्या प्रश्न था कि इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक वस्तु क्या है। अभी हम स्कूल्स में पढ़ते हैं बच्चे या जो लोग बच्चे थे अभी वो बूढ़े हो गए हैं स्कूल में पढ़कर, तो उन्होंने भी देखा है कि वर्ल्ड में क्या है, 7 वंडर्स हैं, 7 आश्चर्य हैं। लेकिन इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है या आश्चर्यजनक चीज कोई है तो वो महाभारत में वर्णित है। और किसके मुख से निकला है वो उत्तर? युधिष्ठिर महाराज के। जब उस यक्ष ने प्रश्न पूछा कि जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यतः परम्। कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में देखता है कि मेरे सामने मेरे पड़ोसी की मृत्यु हो रही है, मेरे माता पिता मर गए हैं, रिलेटिव्स की मृत्यु हो रही है, न्यूज में और रेडियोज में हम सुनते हैं कि लोग मरते जा रहे हैं, और हम किसी की अंतक्रिया के लिए भी जाते हैं, लेकिन हमें ये महसूस नहीं होता कि मेरे भी एक दिन मृत्यु होने वाली है। किसी भी व्यक्ति को नहीं लगता कि मैं मरने वाला हूं। तो शास्त्र कहते हैं कि यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अपने आंखों के सामने देखते हुए भी, अपने कानों से सुनते हुए भी व्यक्ति क्या है? बहरा है। व्यक्ति क्या है? अंधा है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है, जिसका लाभ हमें उठाना चाहिए। और हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके माँ के गर्भ से जब बाहर निकलते हैं, तब से हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ तलाश करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते हैं। खोजते कि नहीं खोजते, इसलिए रिसर्च करते रहते हैं। तो माँ के गर्भ से बाहर बच्चा जन्म लेता है तो वो ढूंढता है कि माँ का स्तन कहाँ है, जिसको वो क्या करेगा? पिएगा। उसके बाद वो स्कूल में जाता है, खिलौने ढूंढता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, खाने पीने की वस्तुएं ढूंढता है, फ्रेंड्स को ढूंढता है। तो मतलब हर क्षण पूरा जीवन व्यक्ति एक चीज की तलाश में है, और वो तलाश क्या है? अपने जीवन में सुख चाहता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आनंद या सुख की कामना करता है, और ऐसा सुख जो कभी भी खत्म ना हो, ऐसा सुख चाहता है व्यक्ति, ऐसा आनंद अपने जीवन में चाहता है कि जो कभी भी समाप्त ना हो। लेकिन हम यदि गंभीरता से देखें तो हम कभी भी ऐसे सुख को हम प्राप्त नहीं कर पाते, कभी भी ऐसी हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जिरयंती जिरयतः केशा दंता जिरयंती जिरयतः। कि कैसे कहते हैं कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो बाल हैं वो भी क्या होते हैं? पकने लगते हैं, सफेद हो जाते हैं, दांत भी हिलने लगते हैं। कालांतर में समय के कारण बुढ़ापा आता है तो दांत भी मुंह से बाहर निकल पड़ते हैं। लेकिन वो कहते हैं दो चीजें जीवन में कम नहीं होती, वो क्या है? धनाशा जीवित आशा जिरियतोपि न जिरियति। वो कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति के धन प्राप्त करने की आशा, और दूसरा क्या है? ये संसार में जीवित रहने की जो आशा है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा धन की कामना करता रहता है। बुढ़ापा भी आ जाए तो भी वो अधिक अधिक धन की कामना करता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक महान साधु एक ऐसे घूम रहे थे, घूमते घूमते एक दुकान वाले व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, और उसके शॉप में दो तीन यंग लड़के थे, और उनका जो पिता है बूढ़ा था, जो वहां बैठा था काउंटर पर, तो बच्चे बारंबार उसको कहा करते थे, पिताश्री पिताश्री आप क्या कीजिए, थोड़ा जाइए भगवान की सेवा करिए, भगवान अभी आयु हो गई है, भगवान का भजन करिए। तो उनको कोई रुचि नहीं थी। जब वो साधु उनके दुकान में आए तो साधु को कहा, आप तो इतना भ्रमण करते, मेरे पिताजी को ले जाओ। तो साधु कहता, मैं तो भ्रमण करता ही रहता हूँ, तो फिर आप इनको भेज सकते हो। साधु को लगा, मैं तो अकेले ही घूमता हूँ, अच्छा है एक साथी मुझे मिला। तो वो गया उनके साथ और कई स्थानों का भ्रमण करके, कई तीर्थों का भ्रमण कर करके साधु थक गए कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया। कहता, इस व्यक्ति से परेशान हो गया हूँ। लाकर उन्होंने बच्चों के पास फेंक दिया कि ये ले लो आपके पिताश्री, इसमें कोई बदल नहीं हो सकता, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, उन बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि साधु महाराज महाशय आप क्या कीजिए, फिर से ले जाइए इनको यात्रा में। तो फिर से वो ले गए, उन्होंने कहा ये अंतिम बार है। जब उनको ले गए तो ऐसे यूपी में भ्रमण करते करते वो गए इलाहाबाद, चित्रकूट, अयोध्या, नैमिषारण्य, ये सब करते करते फाइनली बनारस पहुंचे। कहां पहुंचे? बनारस, काशी पहुंचे। तो जब बनारस पहुंचे तो वहां काशी विश्वनाथ का दर्शन आदि किया, बिंदु माधव जो राधा कृष्ण टेम्पल है वहां उनका दर्शन करके साधु ने कहा कि चलो अभी हम गंगा स्नान करने के लिए चलते हैं, गंगा स्नान से हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, गंगा की कृपा प्राप्त करते हैं। तो जब वो गंगा स्नान के लिए उस गंगा घाट में जा रहे थे तो दूर से अचानक इस व्यक्ति को देखा तो ये व्यक्ति रो रहा था। क्या हो रहा था? साधु को लगा कि मेरा जीवन धन्य है कि अपने जीवन में एक व्यक्ति को मैं बदल पाया। क्या कर पाया? मैंने बदल डाला एक व्यक्ति का जीवन। कम से कम एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण के रोना सीख गया है भगवान के लिए, ऐसा साधु मन में मन सोच रहा था और आनंदित हो रहा था। जैसे उस घाट से सीढ़ियां उतर रहे थे, साथ में दिखाई दे रहा था बनारस में यह है स्मशान भूमि है जहां निरंतर गंगा के किनारे अंतिम शरीर, अंतिम क्रिया होती है। वो फायर है जो हजारों सालों से क्या है, जल रही है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है शरीरों को देहान जलाने के लिए। तो जब इन सब चीजों को इस व्यक्ति ने देखा, साधु को लगा इसके हृदय में इतना वैराग्य आ गया है, तो साधु आनंदित हो रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, पूछ ही लेता हूँ क्यों इतने वैराग्य आ रहा है, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल ये हो गया है। क्या हो गया है? विफल हो गया है, व्यर्थ हो गया है। उन्होंने कहा सही शब्द बोल रहा है ना, ऑन ट्रैक, ट्रैक में है। तो उन्होंने कहा ये सही शब्दों बोल रहा है कि मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया, इतना सारा मैंने आयु अपनी गवाई, बुढ़ापा आ गया। तो उन्होंने पूछा बताइए कैसे व्यर्थ हो गया? उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे यदि पता होता लकड़ी का इतना डिमांड है तो मैं कपड़े का बिजनेस नहीं करता। क्या कहा उसने? लकड़ी का इतना डिमांड है तो मैं कपड़े का बिजनेस नहीं करता। तो मतलब हम देखते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाए, शरीर जर्जर हो जाए, लेकिन एक आशा क्या है उसके जीवन में, होप, एक आशा उसके जीवन में है कि मैं एक दिन क्या होऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जनरली कहते हैं ना लोग, हम होंगे कामयाब एक दिन। हर एक व्यक्ति अपने जीवन केवल गवा रहा है स्वप्न देखने में, और क्या स्वप्न देखता है? सुख प्राप्ति का स्वप्न देखता है। एक ऐसे ब्रह्मचारी था, एक ऐसे एक भक्त था ब्रह्मचारी, और उसने भी स्वप्न देखना शुरू कर दिया। उसने क्या स्वप्न देखा? उसने सोचा अभी मेरे पास धन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसको भिक्षा मांगना उसका कर्तव्य है, घर घर में जाकर अपना कपड़ा फैलाते हुए गांव में भिक्षा मांगता था, तो भिक्षा में उसको आटा मिला। क्या मिला? आटा, बहुत सारा आटा मिला। तो अपनी छोटी सी झोपड़ी में वो आटा या कुटिया में वो आटा लेके आया और आटे को ऊपर बांध दिया। जैसे बांधा और उसने क्या किया, फिर उसके नीचे थोड़ा सा आराम करने के लिए अपनी तकिया उठाई, तकिया रख दी और उसके ऊपर सर डाल के पाँव के ऊपर पाँव रख के सो गया। जल्दी सोते ना, पाँव के ऊपर पाँव रखो ऊपर हो जाता है। और जब ऐसे सो रहा था तो वो आंखें बंद करके स्वप्न देख रहा था। क्या? कि अरे ये जो आटा है इसको मैं बेचकर एक मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी से उसके और दो तीन मुर्गियां हो जाएंगे, अंडे हो जाएंगे, उन सबको बेचकर मैं और कुछ धन प्राप्त करूंगा, गाय आदि खरीदूंगा और उसको बेचकर दूध आदि होगा तो मेरे पास धन आ जाएगा, और धन आएगा तो मैं एक घर छोटा सा बनाऊंगा, गाड़ी भी होगी मेरे पास, और फिर किसी को भी मैं अप्रोच करूंगा तो कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी से मेरा विवाह कर देगा, ऐसा वो सोच रहा था। और यह भी यहाँ तक हो गया कि फिर वो विवाह हो जाएगा, वो घर में आएगी तो मेरे कपड़े धोएगी, मेरे लिए कुकिंग करेगी, यानी सारा व्यवस्था करेगी, और यदि वो कुछ करने के लिए मना करेगी तो मैं उनको लात मारूंगा। क्या मारूंगा? वैसे उसने लात ऊपर उठाई और वो आटा जो टांगा हुआ था उसके ऊपर लात मारी और सारा आटा क्या हुआ, उसके सर पे गिर गया। तो इस प्रकार से हमारा जीवन भी है, पूरे जीवन में हम केवल स्वप्न में स्वप्न देखते रहते हैं, सुख प्राप्ति का स्वप्न देखते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये जगत क्या है, दुखालय है। सुख तो एक ही स्थान में है, भगवान के चरण कमलों में क्या है, असीम मात्रा में सुख भरा पड़ा है। तो हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदोमयोभ्यासात, कि आत्मा सदैव आनंद की कामना करता है, क्योंकि भगवान आनंद के सागर हैं, आनंद के आगार हैं। तो हम भी आनंद या सुख के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हम जिस सुख की तलाश कर रहे हैं अपने जीवन में, वो इस जगत में नहीं है। वो जो सुख है वो किसी इस जगत में ना धन में, ना वस्तुओं में, ना स्थान में हो रहे हैं। वो सुख कहाँ है? जब ये आत्मा भगवान जो पूर्ण अंश है उनकी सेवा करता है, तो स्वाभाविक रूप से सुख की अनुभूति करता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमारा शरीर बूढ़ा हो भी जाए तो भी सुखी होने की जो इच्छा है वो बूढ़ी नहीं होती, वो हमेशा क्या रहती है? जवान रहती है। कि मुझे धन प्राप्त करना है, उसके लिए वो कार्य करता है। इसलिए धनाशा, इसलिए कहते हैं बुढ़ापा आ जाए तो भी धन या भोग या सुख करने की इच्छा कम नहीं होती, वो आशा बनी रहती है। इसलिए तो लोग बड़े बड़े लोग आपस में युद्ध करते हैं, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों? धन प्राप्ति करने के लिए, जमीन आदि प्राप्त करने के लिए। इसलिए शास्त्र कहते धनाशा, और दूसरी आशा वो भी बूढ़ी नहीं होती। कौन सी आशा है वो? दूसरी जीवित आशा, जीवित रहने की इच्छा। कौन व्यक्ति इस संसार में जो स्वयं कह सकता है कि मैं मरना चाहता हूं? है कोई ऐसा व्यक्ति? नहीं है। इस संसार में हर एक व्यक्ति इस भावना से भरा हुआ है कि मैं जीवित रहना चाहता हूं। इसलिए तो हर कोई लाइफ में जो स्ट्रगल है वो केवल जीवित रहने के लिए है, और आगे बढ़ने के लिए, सुख की कामना करने के लिए। तो लेकिन हम यदि ये सही है, ये जो आशा है या ये जो इच्छा है वो राइट है, क्योंकि आत्मा को क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा के लिए जन्म नहीं है, आत्मा के लिए मृत्यु नहीं है, आत्मा के लिए बुढ़ापा नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से आत्मा क्या है? शाश्वत है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो इस आत्मा को न शस्त्र से मारा जा सकता है और न वायु या अग्नि से सुखाया या जलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा का ये स्वभाव है। तो आत्मा क्योंकि अमर है, शाश्वत है, लेकिन इस आत्मा को ऐसे शरीर में डाल दिया है जो शरीर शाश्वत नहीं है। समय के कारण इस शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। ये किसी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर स्थिर हो जाता है, अपने शरीर से दूसरा शरीर पैदा करता है, फिर बूढ़ा होने लगता है और फाइनली मरता है। तो शास्त्र कहते हैं कि शरीर में 6 परिवर्तन है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है, और वो तभी सुखी हो सकता है जब उनकी सेवा करें। तो हम जीवित रहना चाहते, क्योंकि इस जगत में हम कितना भी कहे किसी से आई लव यू, कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन वो सारा क्या है? धोखा है, वो सारा झूठे वक्तव्य है। असलियत क्या है? बिरबल और अकबर की उस स्टोरी से हम सीखते हैं। तो एक बार अकबर ने बिरबल को पूछा कि बिरबल बताओ, ये जगत में व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? ये जगत में सबसे अधिक व्यक्ति को प्रिय वस्तु क्या है? तो बिरबल ने कहा कि इस जगत में सबसे प्रिय वस्तु क्या है? अपना शरीर। अपने आप से व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए बीमार हो जाते हैं तो हम अपने धन से अधिक प्रेम नहीं करते, कितना भी धन लुटाने के लिए तैयार है कि मुझे ठीक होना है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति सर्वाधिक अपने आप से प्रेम करता है, बीरबल ने कहा। तो अकबर कहते हैं नहीं नहीं, व्यक्ति तो अपने बाकी से प्रेम अधिक करता है। उन्होंने कहा कल मैं आपको बताता हूं। तो जो बीरबल है कल जब ऑफिस आया, मंत्री है, महामंत्री, वो ऑफिस आया तो अपने साथ एक बड़ा सा ड्रम लेके आया, और ड्रम के साथ क्या लेके आया? एक बंदरी ले आया, और उसके पास उसका छोटा सा बच्चा पिल्ला उस बंदरी का था, उनको भी लाया। तो जब उस महल में, उस सभा में अकबर के सामने वो ड्रम रखा ऊंचा बड़ा सा, और एक पाइप से उसमें पानी डालना शुरू किया, और उसके अंदर उन्होंने किसको डाला? उस बंदरिया और उसके बच्चे को डाल दिया, और धीरे धीरे पानी को छोड़ा जा रहा था उस ड्रम में, और पानी की साइज जैसे जैसे बढ़ते गए तो बंदर ने देखा कि अरे मेरा बेटा मेरा बच्चा ये तो डूब रहा है, तो उसको उठाया छाती से लगाया, पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, फिर उसको उठाया अपने सर में रखा, पानी का लेवल बढ़ते जा रहा है, पानी जैसे जैसे बढ़ते जा रहा था और वो बंदरिया डूबने लगे, उसके मुंह तक आंखों तक सर तक पानी आया। उसने क्या किया, उस बच्चे को अपने हाथ से निकाला, उसको नीचे डाला, उसके ऊपर खड़े होकर बाहर जंप मार के आ गई। तो अकबर को आश्चर्य हो गया। बीरबल ने कहा देखा आपने कि सर्वाधिक व्यक्ति क्या करता है, किससे प्रेम करता है, अपने आप से प्रेम करता है। इसलिए भौतिक जगत में भी देखो, कोई व्यक्ति तलाक ले लेता है, डाइवर्स हो जाता है, बच्चों की यदि किसी को प्रेम है तो एक बच्चा पत्नी के पास तो दूसरा बच्चा पिता के पास, कितनी भयानक स्थिति है मॉडर्न एज में। तो अत्यधिक देखा जाए तो हम सर्वाधिक अपने आप से प्रेम करते हैं, हम जीवित रहना चाहते हैं और उसके लिए हम कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। भागवतम में वर्णन आता है कंस का, कंस अपनी बहन को शादी के उपरांत रथ के ऊपर वो स्वयं रथ चला रहा है और उनको छोड़ने के लिए जा रहा है वसुदेव के साथ, तो आकाशवाणी सुनाई देती है। क्या सुनाई देता है, आकाशवाणी। और उस आकाशवाणी में ये कहा गया था कि जिस बहन का आप रथ हाँक रहे हो उसका ही आठवां पुत्र आपके मृत्यु का कारण बनेगा। इसको सुनने मात्र से इतना उसके हृदय में प्रेम था, वो सारा प्रेम चला गया। कंस ने क्या किया, अपनी तलवार निकाली, तलवार निकालकर जो अभी अभी जिसके बालों में हल्दी आदि शुभ चीजों से उनको श्रृंगार आदि किया गया था, नहलाया गया था, जो वधु देवकी उसके बाल पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काटने के लिए अपनी तलवार निकाल के तत्पर हो जाता है। तो ये क्यों, कंस क्या क्या चाह रहा था, जीवित रहना चाह रहा था। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के जीवन में भी हम देखते हैं, हिरण्यकश्यपु भी इस संसार में तपस्या करता है और ब्रह्मा से कई सारे वर मांगता है, और क्या वर मांगता है, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो वो अमर रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति हमेशा यंग रहना चाहता है, जवान रहना चाहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हिरण्यकश्यपु भी अमर रहना चाह रहा था और उसने भी भगवान ब्रह्मा से वर मांगा। क्या वर मांगा, कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने कहा मैं भी मरणशील हूं, मुझे मृत्यु में मृत्यु तुम्हें नहीं प्रदान कर सकता, मृत्यु से बचा नहीं सकता। तो उन्होंने वर क्या मांगा, कि मुझे किसी व्यक्ति से मृत्यु ना हो मेरे, किसी शस्त्र से अस्त्र से, दिन में रात में, घर के अंदर घर के बाहर, जितना भी हिरण्यकश्यपु का बुद्धि चल रहा था मृत्यु से बचने के लिए उतना उसने बोल दिया। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, आपने कमंडल से दल निकाल कर बोल दिया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, जब प्रहलाद महाराज के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं और प्रहलाद जो छोटा सा बालक था जिसका भगवान के नामों में गहरी श्रद्धा थी, प्रहलाद छोटा सा 5 साल का था फिर भी निरंतर क्या करता था, भगवान के नाम उसके जिह्वा पर नाचते थे। कौन से नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा था और हिरण्यकश्यपु के द्वारा बहुत सारे कष्ट उन्हें मिले, लेकिन वो कष्ट प्रहलाद का विनाश नहीं कर पाए। वो हमेशा भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित थे। तो उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि हे छोटे बेटे, तुम्हें शक्ति कहां से मिल रही है, तुम्हें इतना कष्ट में दे रहा हूं फिर भी ये जो भगवान के नाम है ये तुम बोलते जा रहे हो, कृष्ण नाम का उच्चारण करते जा रहे हो, बोलो कहां से शक्ति मिल रही है। तो उन्होंने कहा जिनसे आपको शक्ति मिल रही है वहां से मुझे भी शक्ति प्राप्त हो रही है। तो हिरण्यकश्यपु नास्तिक प्रवृत्ति का असुर था, उसने कहा है तुम्हारे भगवान, भगवान तो दिखाई नहीं देते, हम भी कहते ना कहां है भगवान, अभी अपना अपने आप को हम देख नहीं पाते हैं, हमें आईने का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है, आईने का सहारा लेना पड़ता है, तो हम भगवान जो अपने आंखों से परे जिनका नाम आदोक्षज है उनको कहां देख पाएंगे। हम फैन के नीचे बैठते हैं, हम तो हवा को नहीं देख पाते, अपने आईलिड्स को नहीं देख पाते जो पलके हैं, तो भगवान को देखने की क्या योग्यता हमारे पास है? इस संसार में किसी चीज को देखने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, उसी प्रकार से शास्त्र कहते भगवान को देखने के लिए भी योग्यता चाहिए। तो उसी लिए तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे तुम मेरा विश्व रूप देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें दिव्य आंखों की आवश्यकता है। अर्जुन मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, ददामि ते दिव्य चक्षु, में दिव्य चक्षु तुम्हें दे रहा हूँ जिनके द्वारा तुम देख सकते हो। तो इस प्रकार से जब प्रहलाद ने कहा कि मैं तो मेरे भगवान को सब जगह देख रहा हूँ, तो भगवान के भक्त तो हर स्थान में हर जगह कृष्ण को देखते हैं। जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे, जहां जहां वो नेत्र डालते वहां वहां कृष्ण को देखते हैं। तो जो उन्होंने कहा कि ये जो खंभा है, ये खंभा जो है, क्या इस खंभे में भी तुम्हारे भगवान है? तो इतना प्रगाढ़ फेत छोटे से बालक ध्रुव प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में भी क्या है? मेरे भगवान है। उन्होंने कहा मैंने महल बनाया है, मैंने जब बनाते हुए तो नहीं मिले थे मुझे इस खंभे में। हाँ, तो जैसे उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान खंभे में है, तो उन्होंने अपनी गदा ली और गदा से प्रहार किया। जैसे जोर से आघात किया, प्रहार किया, तो टूट जाता है वो खंभा दो भागों में, और उसमें से कौन बाहर निकलते हैं? नरसिम्ह देव। जितने भी इसकी बुद्धि थी हिरण्यकश्यपु के, जितने भी वर उन्होंने मांगे थे कि मुझे मनुष्य से नहीं, प्राणी से नहीं, शस्त्र से नहीं, आश्रय से नहीं, घर के बाहर नहीं, अंदर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, जितने भी वर मांगे थे वो सारे वर फेल करने के लिए भगवान कृष्ण आ जाते हैं। कौन से रूप में? नरसिंह के रूप में। ना वो सिंह है ना मनुष्य है। तो आते हैं और भगवान हिरण्यकश्यपु को उठाते हैं, उठा के जिस प्रकार से एक बिल्ली चूहे को खाने से पहले उसके साथ खिलवाड़ करती है, खेलती और फिर उसको खाती है, तो उसी प्रकार से भगवान नरसिंह देव उनके साथ खेलते हैं और फिर उसको उठा के ले जाते। कहाँ ले जाते हैं? भगवान वेट कर रहे थे कि संध्या का समय हो। कौन सा समय हो? संध्या की बेला, संध्या का समय हो, उस समय में उसको मारूंगा, क्योंकि ब्रह्मा के वचनों की रक्षा करनी थी। भगवान अपने भक्तों के वचनों की रक्षा करते हैं, उनके भक्तों के मुंह से जो वचन निकलते हैं कृष्ण उन वचनों को पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे उनके वचनों की पूर्ति करने के लिए भगवान वेट कर रहे थे कि संध्या की बेला हो, और ले जाकर खींचते खींचते उसको उसी के महल में, उसी के दरवाजे के बीच में जाकर क्या करते हैं? भगवान बैठ जाते हैं। और उन्होंने कहा किसी स्थान में नहीं, तो कहां उनको लेते हैं? ऑपरेशन टेबल। पहला कोई ओपन सर्जरी हुआ था इस संसार में, तो ओपन सर्जरी किसने की थी? नरसिम्ह देव ने। और कौन थे पहले पेशेंट? हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में ऐसे लेटाया, और लेटाकर कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया उसको कि उसको पेन ना हो। हाँ, सीधा क्या किया उसका? हाँ, पेट को खोला भगवान ने। क्यों? क्या था उसके अंदर कमी? भगवान और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या कर रहा था। क्या कमी थी? हाँ, भगवान वो ऑपरेशन इसलिए करना चाह रहे थे कि उसके अंदर नास्तिक प्रवृत्ति थे, वो भगवान से ईर्ष्या करता था और भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करता था, जिसके कारण वो इस कष्ट का, उस दुख का भागीदार बना। तो भगवान ने उसका ऑपरेशन किया, और कैसे? कोई शस्त्रास्त्र इस्तेमाल नहीं किया, अपने नाखूनों के द्वारा उनको मारा और देखा, अरे अभी इतना सारा हो रहा है, कोई कैमरा मेरे ऊपर नहीं है। भगवान नरसिंह देव भी सोचने लगे मुझे लाइमलाइट में होना चाहिए, पहला सर्जरी हो रहा है, इतना बड़ा काम, कोई मुझे देख ही नहीं रहा है। जैसे कोई मीडिया वाले भी नहीं थे वहां, तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने सोचा चलो कोई हार पहनाने वाला भी नहीं है, तो क्या किया, उनके अतड़िया निकाल दी और गले में माला डाल दी भगवान ने। और उस समय सारे देवी देवता, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, दुर्गा आदि सारे आ गए, और भगवान कृष्ण के सामने ऐसे हाथ जोड़कर नरसिम्हा की प्रार्थना करने लगे। हर कोई डर रहा था, इवन लक्ष्मी भी आ गई। तो ब्रह्मा आदि देवता कहते इनके सामने तो हम नहीं जा सकते, लक्ष्मी तुम तो इनकी पत्नी हो, आप जाओ। वो कहते मेरे पति रोज शांत रहते हैं, लेकिन आज नहीं जा सकती, आज कुछ अलग मूड में है। तो उन्होंने कहा कौन है जो भगवान नरसिम्ह देव के क्रोध को शांत कर सकता है? तो सबने किसकी ओर देखा? छोटे से बालक प्रहलाद। तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई ऐसी खास योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी आयु होनी चाहिए, बहुत नॉलेज होना चाहिए। नहीं, हमारे पास भगवान की सेवा करने की हृदय में छोटी सी इच्छा होनी चाहिए। और जब हम उस भावना से भगवत सेवा करते हैं तो भगवान अपने हो जाते हैं। तो सबने कहा प्रहलाद को भेजो, तो प्रहलाद जब गए, उनको भेजा तो प्रहलाद गए तो एक माला लेकर गए। अब देखो, संसार में ऐसा कोई है कि आपके पिता को आकर आपके घर में मार दिया और उसी को जाकर आप क्या करते हो, धन्यवाद आपने मेरे पिता की हत्या की, आप ये माला लीजिए। तो प्रहलाद नरसिम्हदेव को माला लेकर गए और नरसिम्हदेव तो इतने बड़े विशाल थे, और फिर उनको माला उन्होंने डाली और प्रहलाद को उठाया और अपने गोद में बिठाया, छोटे से बालक। तो नरसिम्हदेव सोचने लगे, मुझे जितना आनंद नहीं मिल रहा है, इसको इतना आनंद कैसे मिल रहा है मेरे गोद में बैठकर मेरी भक्ति करके। तो भगवान भी सोच रहे थे कि मुझसे अधिक आनंद किसको मिलता है, मेरे भक्तों को मेरी सेवा करके। ये भावना नरसिम्हदेव को सबसे पहले अनुभव हुई और नरसिम्हदेव ने कहा, हे बालक प्रहलाद, कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मैं व्यापारी नहीं हूं, हे भगवान, मैं आपके पास कोई व्यापारी नहीं हूं, बिजनेसमैन नहीं हूं कि आपके पास आओ और उसके आपकी सेवा के बदले आपसे कुछ मांगो। क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। मंदिर में जाते तो हम कहीं किस लिए जाते हैं, सारे दुखों का बोझा लेके जाते हैं। भगवान आजकल बहुत कष्टमय दिन चल रहे हैं, हाँ थोड़ा ठीक करो, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। हम डिमांड करते रहते, मांगते हैं, एक लिस्ट लेके जाते हैं, जैसे कि मॉल या सुपरमार्केट में व्यक्ति जाता है वैसे लिस्ट लेकर व्यक्ति चैंपल पहुंचता है। तो प्रहलाद ने कहा, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ आप देना ही चाहते हो तो क्या दे दो। दो चीजें उन्होंने मांगी, हे भगवान, आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, अर्पित करना चाहते हो, तो एक चीज दे दो, ये कि मेरे हृदय में इस भौतिक संसार को भोग करने की जो भावना है उसको हृदय से हटा दो और आपकी सेवा करने की भावना मेरे हृदय में डाल दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। एवं और दूसरी चीज उन्होंने मांगी कि मेरे जो पिता बहुत आसुर थे, बहुत नास्तिक थे, उनको भी आपके चरणों का स्थान प्रदान करो। भगवान नरसिम्हदेव ने कहा, प्रहलाद, अरे जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त है उसके तो माता और पिता के कुल के दोनों लोगों का क्या है, उद्धार संभव है, उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हम सब जीवित रहना चाहते हैं और ये कामना करते हैं, इसलिए कहा गया है, अंगम गलितम पलितम वृद्धा यावत गृहीत्वा दंडम तथापि न मुंचति आशा पिंडम। मतलब अंगम गलितम, बुढ़ापे में शरीर गलने लगता है, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बुढ़ापा आता है तो सर के सारे बाल निकल जाते हैं, अपने आप हवा में उड़ जाते, पता भी नहीं चलता कब चले गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम वृद्धा यावत गृहीत्वा दंडम, जो वृद्धावस्था आती है जिसको कोई नहीं चाहता संसार में, कौन चाहता है बूढ़ा होना, नहीं चाहता, लेकिन उसके बारे में सोचना नहीं चाहता कि मैं क्यों बूढ़ा हो रहा हूं, क्यों मुझे मरना पड़ेगा, क्यों मुझे बीमारी का सामना करना पड़ेगा, क्यों मुझे जन्म लेना है। तो जीवन की ये वास्तविक समस्याएं हैं जिनका सॉल्यूशन भगवान भगवत गीता में देते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्वेश्चन करता है, पूछता है, इनसे पार कैसे हुआ जाए, उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जब बूढ़ा भी हो जाता है, दशना विहीनम जातम तुंडम, बुढ़ापा आता है तो सारे दांत मुंह से निकल जाते हैं, वृद्धा यावत गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था आती है तो एक डंडे का सहारा लेना पड़ता है। तो शास्त्र कहते फिर भी इतनी सारी शरीर की बुरी हालत होने के बावजूद भी एक चीज उसके हृदय से जाती नहीं है, तथापि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी सुखी होने की जो आशा है उसके हृदय से जाती नहीं, फिर भी वो सपना देखता रहता है। इसलिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, ये हमारे हाथ से गंवाना, मतलब आपके हाथ में हीरा आया और आपने उसको पत्थर समझकर या कोयला समझ के क्या कर दिया, फेंक दिया, तो हमारे जैसे मूर्ख कोई नहीं है। फिर से हमें इस भौतिक जगत के सांसारिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है और जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं भगवान के बारे में जानने में, उनकी सेवा करने में और उनके नामों का उच्चारण करने में। सब बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की सर्वोत्कृष्ट और सबसे सरल सेवा हम अपने जिभा से कर सकते हैं। ये जीभ जो मृत्यु के समय सबसे पहले आग कहां लगाई जाती है, जिभा को, सर्प के पास। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जीभ जलने वाली है, नष्ट होने वाली है। हाँ, तो उसका इस्तेमाल किस लिए करो, भगवान का गुणगान करने के लिए करो, क्योंकि ये जीभ हमें सुख दे सकती है, परम सुख, और सबसे अधिक कष्ट भी दे सकती है। एक बार ये जीभ और दांतों के बीच में फाइट हो रही थी, और इन सबने सोचा, दांतों ने कहा, ये दांत उसको जीभ को कहने लगे, कहा इधर उधर घूमती रहती है बार बार, है ना, जीभ इधर उधर कुछ काम करती रहती, चुप एक जगह बैठ, शांत बैठो। तो वो तैयार नहीं थी, नहीं तो उन्होंने कहा हम कितने दांत हैं, 32 हम सब तुम्हें ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, जीवा ने बोला, जीभ कहने लगे, मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी ना तो तुम आप सब एक फटके में बाहर आ जाओगे, एक झटके में। तो हम कोई गलत बोलते हैं, कोई जोर से हमें मारता है तो सारे दांत क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। उन्होंने कहा आप 32 हो, लेकिन 32 को मैं एक क्षण में भी बाहर कर सकते हो, थोड़ा सा हिलकर। तो इस प्रकार से जिह्वा हमें अत्यधिक कष्ट दे सकती है और सर्वोच्च चीज भी दे सकती है, वो क्या है, भगवान के पास वापस जाने की स्थिति, वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब है वही, मतलब का जहां नहीं, कुंठा मीन्स कष्ट, जहां कष्ट का अस्तित्व नहीं है वो वैकुंठ है। और हम सब लोग दुख से रहित जीवन यापन करना चाहते हैं, और वो संभव हो सकता है जब हम भगवान के बारे में समझते हैं भक्तों के द्वारा, भगवत गीता के माध्यम से, और भगवान के नामों का क्या करते हैं, जप करते, उच्चारण करते। कलियुगा में भगवत प्राप्ति सर्वाधिक सरल है, कलियुगा में बाकी और चीजें नहीं है, योग आदि नहीं है, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, जो भी, कलियुगा में केवल एक ही चीज लाभदायक है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कलियुगा में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, नास्ते व नास्ते व नास्ते, मतलब नहीं नहीं नहीं, किसी चीज पर जोर देना है तो हम बार बार उसको बोलते, 3 बार बोलते कम से कम। हाँ, जैसे घर में भी किसी को बोले अरे पानी लेके आओ, 1 बार सुनाई नहीं देता पत्नी को, कितने बार बोलना पड़ता है, 3 बार पानी लेके आओ, आवाज थोड़ी तेज हो जाती है, पानी लेके आओ, तो वो समझ में आता है कि पानी मांग रहे हैं। तो वैसे ही कलियुगा के लोगों की दयनीय स्थिति है, उनको 1 बार बोलने से समझ में नहीं आता, इसलिए शास्त्र कहते कि इनको बार बार बोलना होता है। इसलिए कहा कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व, नहीं है नहीं है नहीं है, और कोई गति नहीं है, भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम है। और विशेष रूप से भगवान के तो हजारों नाम है, कोई कह सकता है आप तो हरे कृष्ण से आए हो तो हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हो, नहीं, ये हमारा मंत्र नहीं है। आप मेडिसिन के शॉप में जाओगे, मेडिकल स्टोर में, और आपको सर दर्द हो रहा है, और आप कहोगे कि ना सारी दवाइयां हैं, मुझे दवाई दे दो, कोई भी दवाई दो, काम चलेगा, नहीं, जो प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने वही दवाई आप ले लो तब ठीक हो जाओगे। उसी प्रकार से भगवान के तो अनंत करोड़ों नाम है, लेकिन कलियुगा के लिए शास्त्रों में प्रिस्क्राइब किए हैं। इसलिए तो नारद ने कलियुगा के लोगों की दयनीय स्थिति देखी तो वो ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा कि इन कलियुगा के लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, वो मंद बुद्धि के है, कम आयु के है, मंद भाग्य के है। तो ब्रह्मा ने कहा इति षोडशकम नामनाम कलि कल्मश नाशनम, ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलियुगा में 16 अक्षरों का भगवत नाम सारे कलमोशन से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है, जीवन के सारे अमंगलों को दूर कर सकता है। तो इसलिए वो पवित्र नाम क्या है, ब्रह्मा ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप सब लोग बहुत अधिक भाग्यशाली हैं कि आप यहाँ अपना समय निकाल कर यहाँ आते हैं, भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भगवान उन व्यक्तियों से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जो उनको जानना चाहते हैं। तो आप आते रहिए और इस शिक्षा को गंभीरता से स्वीकार करिए, ताकि आपका जो जीवन है वो भी धन्यमय, सुखमय और शांतिमय बन सकता है। हरे कृष्णा।